ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की द्वारा आने वाले फागुन 21 गते के लिए तय प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के विषय पर विघटित संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श। भ्रष्टाचार के विषय में राज्य के निकाय ने तेजी से कर रही है जांच। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। बाजुरा के मारतड़ी से कोल्टी तक के बस सेवा 4 महीने के बाद हुआ पुनः संचालन। और जापान में प्रथम महिला प्रधानमंत्री में 64 वर्षीय सनाए तकाइचे निर्वाचित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आज आगामी निर्वाचन के तैयारी के बारे में प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श की है। जिनजी आंदोलन के बाद अभी के सरकार गठित होने के बाद आज पहली बार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श की है। इससे पहले राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल और निर्वाचन आयोग के आह्वान में राजनीतिक दलों के साथ आने वाले निर्वाचन के विषय पर विचार विमर्श हुआ था, पर सरकार के साथ राजनीतिक दलों को प्रत्यक्ष संवाद नहीं हो पाई थी। प्रधानमंत्री निवास बालवा 4 में हुए विचार विमर्श में नेपाली कांग्रेस के गगन कुमार थापा और डॉ प्रकाश शरण महत, नेकपा एमाले के शंकर पोखरेल और प्रदीप कुमार गेवाली, नेकपा माओवादी केंद्र के वर्षमान पून और पंफा भूसाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी के राजेंद्र पांडे और प्रकाश ज्वाला, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के डॉ स्वर्णिम बागले और सोविता गौतम, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के राजेंद्र गुरुंग और मोहन श्रेष्ठ, जनता समाजवादी पार्टी के उपेंद्र यादव और प्रकाश अधिकारी, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के सर्वेंद्र नाथ शुक्ला, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी के रेशम चौधरी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी के प्रेम सुवाल और जनमत पार्टी के चंदन सिंह सहभागी थे। प्रधानमंत्री कार्की द्वारा आह्वान किए गए विचार विमर्श में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री कार्की के साथ अर्थमंत्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री कुलमान घिशिंग, गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल, कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री मदन परियार, संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री जगदीश खरेल और प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार अजय भद्र खनाल सहभागी थे। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा कि जिंजी आंदोलन के मर्म से बाहर नहीं जाकर और कानून के अनुरूप काम करूंगी। आज जिंजी आंदोलन में हुए घायलों के साथ प्रधानमंत्री निवास बालवा 4 में हुए विचार विमर्श में प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि राज्य के स्थापित निकाय ने तीव्र गति के साथ भ्रष्टाचार और जांच हो रही है और आंदोलनकारी घायलों को बोलने और हम लोगों को दबाव देते रहने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री कार्की ने कहा कि सरकार को दिए गए मैंडेट अनुसार आगामी फागुन में चुनाव कराने के लिए मैं क्रियाशील हूं। विचार विमर्श में गृहमंत्री ओम प्रकाश अर्याल ने कहा कि भ्रष्टाचार और आंदोलन में हुए दमन के जांच बूझ के प्रगति के बारे में अवगत कराते हुए भागने का प्रयास और नहीं भाग पाने के अवस्था में नेपाल में ही हूं दिखाने के लिए दिखने लगे हैं। इसी तरह घायलों ने सरकार को भ्रष्टाचारी और दमनकारी विरुद्ध प्रस्तुत होने का सुझाव देते हुए कहा कि कितने आरोपित व्यक्ति भागने का प्रयास कर रहे हैं और अकूत संपत्ति छिपाने लगे हैं, इस विषय पर चिंता व्यक्त किया। बाजुरा के सदर मुकाम मारतड़ी से पूर्वी उत्तरी भाग के कोल्टी तक मंगलवार से पुनः बस सेवा संचालन में आई है। वर्षा शुरू होने के साथ ही आषाढ़ की पहली सप्ताह से रुके हुए बस सेवा 4 महीने के बाद पुनः शुरू हुई है। ये जानकारी बूढ़ी नंदा नगर पालिका के प्रमुख जनक बोहरा ने दी। इससे पहले पिछले साल पूस महीना से मारतड़ी कोल्टी बस सेवा पहली बार संचालन में हुई थी। नेपाली कांग्रेस के कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड़का ने कहा कि सरकार ने उचित वातावरण बनाई तो हमारी पार्टी निर्वाचन में सहभागी होगी। आज सुर्खेत में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव का वातावरण बनाने के बदले पार्टी के नेताओं ऊपर पूर्वाग्रही तरीके से लांछना लगाने, भ्रम सृजना करने और अन्योल को बढ़ाने का काम में लगने का आरोप लगाया है। हमास द्वारा बंदी बनाकर हत्या किए गए नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी का आज गृह जिला कंचनपुर में अंत्येष्टि किया गया है। स्वर्गीय जोशी के महेंद्रनगर स्थित घर से शव यात्रा शुरू होकर महाकाली आर्य घाट पर अंतिम दाह संस्कार किया गया। ये जानकारी कंचनपुर के प्रमुख जिला अधिकारी लक्ष्मण ढकाल ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। चितवन में सवारी दुर्घटनाग्रस्त होने से दो लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में स्कूटर चालक भरतपुर 21 के 25 वर्षीय संदीप घिमिरे और स्कूटर पछाड़ी सवार वहीं के 28 वर्षीय कुशल अर्याल शामिल है। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय के प्रमुख तथा डीएसपी गोविंदपुरी ने दी। गृह मंत्रालय ने जिंजी आंदोलन के दौरान मरने वाले 53 मृतकों के परिवारों को 15 लाख रुपए के दर से आर्थिक सहयोग तथा क्रिया खर्च भेजी है। उनमें से 49 मृतकों के परिवारों ने वह रकम प्राप्त कर चुके हैं और 4 लोगों को भी सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। भाद्र 30 गते के ही मंत्रिपरिषद के बैठक से मृतक नेपाली नागरिक के परिवारों को 10 लाख रुपए आर्थिक सहयोग और 5 लाख रुपए के दर से काज क्रिया तथा अन्य खर्च के लिए वितरण करने के निर्णय हुआ था। बता दें कि आंदोलन के बहाना से भागने के दौरान में मरने वाले कैदी को यह रकम नहीं वितरण की जाएगी। जेंजी आंदोलन के दौरान घायल हुए व्यक्तियों के लिए भैपरी खर्च के बाबत सरकार ने 48,58,000 रूपये निकासा किया है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रारंभिक प्रतिवेदन के आधार पर भैपरी खर्च के बाबत सभी घायलों को 20,000 के दर से वितरण करने के लिए यह रकम भेजा गया है। भोजपुर की रामप्रसाद गांव पालिका वार्ड नंबर 3 के भुलके में 107 घरों में केंद्रीय विद्युत सेवा विस्तार किया गया है। इसी आश्विन 18 गते से लगातार के बारिश के साथ आए तड़के के कारण स्थानीय स्तर में वितरण किया गया जल विद्युत परियोजना के मशीन बिगड़ने के बाद संपूर्ण बस्ती में विद्युत सेवा बंद हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सेनई तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है। जापानी संसद के दोनों सदनों में हुई वोटिंग में उन्हें बहुमत मिला है। 64 साल की तकाइची एक दक्षिणपंथी नेता है। उन्हें जापान की आयरन लेडी कहा जाता है। जापान का प्रधानमंत्री बनने के लिए यह तकाइची का तीसरा प्रयास है। तकाइची सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की सदस्य है। एलडीपी ने पिछले 5 सालों में 4थी बार नया प्रधानमंत्री चुना है। हाल के सालों में यह पार्टी कई घोटालों के आरोपों से घिरी रही है। सेनई तकाइची एलडीपी के कट्टरपंथी धड़े से जुड़ी है और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की करीबी मानी जाती है। इससे पहले वह सरकार में मंत्री रह चुकी है। वह एक टीवी होस्ट भी रही है और हेवी मेटल ड्रमर भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तकाइची की तारीफ करते हुए कहा था कि वह बहुत सम्मानित और बुद्धिमान नेता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद तकाइची के सामने कई चुनौतियां होंगी, जिनमें से प्रमुख सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को तेजी देना, अमेरिका जापान संबंधों में चल रही खटास को संभालना और बंटी हुई सत्तारूढ़ पार्टी को एकजुट करना। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा आने वाले फागुन 21 गते के लिए तय प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के विषय पर विघटित संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श। भ्रष्टाचार के विषय में राज्य के निकाय ने तेजी से कर रही है जांच। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन, बाजुरा के मारतरी से कोल्टी तक के बस सेवा 4 महीने के बाद हुआ पुनः संचालन। और जापान में प्रथम महिला प्रधानमंत्री में 64 वर्षीय सनाए तकाइची निर्वाचित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।